मेरे अत्यंत आत्मीय मित्रों नमस्कार। आज 18 जून 2020 है और आज के इस AFEIS के लाइफ मैनेजमेंट में मैं डॉक्टर विजय अग्रवाल आप सभी का हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं। दोस्तों, फिलहाल हम लोग डिप्रेशन विषय पर बात कर रहे हैं और मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि आप सब इस विषय को लेकर के काफी सतर्क हैं और काफी संवेदनशील भी हैं। इसका अंदाजा मुझे इस बात से लगता है कि डॉक्टर प्रीति अग्रवाल के पास लगातार शाम को 6 बजे से 9 बजे तक आप सबके इतने ज्यादा फोन आ रहे हैं कि वो 3 घंटे तक लगातार आप लोगों से बात कर रही हैं। हो सकता है कि इस बीच में बहुत से आप सब में से कुछ लोगों को वेटिंग भी करना पड़ता हो, तो इस बात का प्रमाण है कि यह विषय आप सबको अधिक व्यावहारिक लग रहा है। और स्वाभाविक है कि यदि आप इसे चाहते हैं तो डेफिनेटली मेरा यह फर्ज बनता है कि मैं इस पर अपेक्षाकृत थोड़े ज्यादा विस्तार से बातें करूं। तो मित्रों, आइए कल की बात को आगे बढ़ाते हैं। कल मैंने अपनी बात की समाप्ति इस बात से की थी कि जो हमारे विचार होते हैं वो बेसिकली हमारे आंतरिक जगत में लगे हुए एक स्विच की तरह होते हैं। जिस तरह के विचार आते हैं उसी तरह के विचार से संबंधित जो केमिकल फैक्ट्री का जो उत्पादन केंद्र है वह ऑन हो जाता है और वहां से उसी तरह के रसों का स्राव होना शुरू हो जाता है और उसका सीधा इम्पैक्ट हमारे चिंतन पर, हमारे आचरण पर और यहां तक कि हमारे शारीरिक गतिविधियों पर भी पड़ता है। और मुझे लगता है मित्रों कि आप सबको इसका बहुत अच्छा अनुभव होगा ही। हो सकता है कि जब ये सब होते हों तब आपने उसे उस तरीके से वाच न किया हो, उस पर उतना ध्यान नहीं दिया हो, आपने सोचा नहीं हो, लेकिन मुझे लगता है कि किसी बात का आपके ऊपर ज्यादा से ज्यादा असर हो सके इसके लिए बहुत जरूरी है कि आप उस बात के या उसकी प्रक्रिया से अनुभव के स्तर पर गुजरें, तब उससे वह चीज आपके और भी ज्यादा गहरे उतरती चली जाती है। इसलिए कभी भी जब ऐसा अवसर आता है तो प्लीज आप उसे जानने की कोशिश करें, पकड़ने की कोशिश करें। देखिए, मैंने उदाहरण क्रोध का दिया था। ऐसा नहीं कि सिर्फ क्रोध के मामले में होता है। आप कल्पना करके देखिए कि जब आप खुश होते हैं, किसी भी कारण से खुश होते हैं, तब आपकी क्या स्थिति होती है? एकदम आपको ऐसा लगेगा जैसा कि शरीर एकदम हल्का हो गया है, बिल्कुल आप ऊर्जा से भर उठेंगे, बाहर की सारी चीजें आपको अपने अनुकूल दिखाई देने लगेंगी, आप दूसरों से भी बात करेंगे तो बड़े प्रेम से बात करेंगे। इसका मतलब है कि आपका जो अंतर मन है वो मिठास से भर गया है, आप अंदर से मीठे हो गए हैं। और अगर अंदर से मीठे हो गए हैं तो देखिए बाहर भी आप मीठा ही बांटेंगे, क्योंकि ये तो सीधा सा देखिए सिद्धांत ही है कि हम दूसरे को वही दे सकते हैं जो हमारे पास होगा। जो हमारे पास होगा ही नहीं वो हम दूसरों को दे नहीं सकते, और जो नहीं होगा ऐसा नहीं कि हम चाह करके उसको वह चीज दे सके क्योंकि हम चाहते हैं कि हम दे दें। उसके लिए जरूरी है कि हमारे पास वह चीज होनी चाहिए। अंदर क्रोध है, हम क्रोध बांटेंगे, अंदर भय है, हम भय बांटेंगे, अंदर प्रेम है, हम प्रेम बांटेंगे, अंदर शांति है, हम शांति बांटेंगे। तो दोस्तों, अब आज मैं थोड़ी इस इश्यू पर बात करने जा रहा हूं कि ये जो विचारों का जो उत्पादन होता है, चलिए मैं उत्पादन शब्द का इस्तेमाल यहां कर रहा हूं, अपने आप होता है या बाहरी परिस्थितियां करती हैं या हम करते हैं। देखिए, ये 3 बातें मैंने कही हैं। अपने आप होता है, ठीक है, डेफिनेटली अपने आप होता है, इसलिए कि जो मस्तिष्क का जो स्वभाव है वो विचार करना है। सामान्यतया ये माना जाता है कि हमारा जो मस्तिष्क है 24 घंटे में 60,000 विचारों का उत्पादन करता है। 60,000 विचार 24 घंटे में इसमें पैदा होते हैं और खत्म होते रहते हैं। देखिए, हमको एहसास नहीं होता है लेकिन हमारा दिमाग थमता नहीं है, वो लगातार सोचता रहता है कुछ ना कुछ। जब हम सो जाते हैं तो आप देखिए जो हम स्वप्न देखते हैं वो क्या है? स्वप्न और कुछ भी नहीं, नींद में हमारे दिमाग द्वारा उत्पन्न किए गए विचार हैं। वो इतने उटपटांग तरीके से होते हैं, इतने सिंबॉलिक तरीके से होते हैं कि हम उसका अर्थ नहीं निकाल पाते, लेकिन दिमाग के द्वारा उत्पादित विचार ही हैं। तो ये अपने आप होते हैं। देखिए, अगर कोई प्रकृति का स्वभाव है, जैसे कि विचार करना हमारे मस्तिष्क का स्वभाव है, तो वह होगा ही। अगर हम उसे रोकने की कोशिश करेंगे तो सीधी सी बात है कि हम बेकार का काम कर रहे हैं, हम प्रकृति के खिलाफ खड़े हो रहे हैं, और अगर हम प्रकृति के खिलाफ खड़े होंगे तो उसका खामियाजा हमें भुगतना पड़ेगा। तो दोस्तों, विचार अपने आप भी उत्पन्न होते हैं, लेकिन ये जो अपने आप उत्पन्न हो रहे हैं ये किस तरीके के हैं हमें ये देखना होगा। यहां अब 2 चीजें रह जाती हैं, बाह्य परिस्थितियां बाह्य परिस्थितियां में सारी चीजों को आप ले सकते हैं, आपको छोड़कर के बाकी जितनी भी चीजें हो रही हैं वो सब के सब बाह्य परिस्थितियों के अंतर्गत हैं। और तीसरा है हम खुद। तो आइए जरा हम बाह्य परिस्थितियों को देखते हैं। आप किसी से भी बात कीजिए, आप खुद से भी बात कीजिए ना कि भाई मैं ऐसा क्यों सोचता हूं, मुझे गुस्सा क्यों आता है, तो ज्यादातर क्या मुझे लगता है कि 100% उत्तर लगभग यही मिलता है कि वो मुझे गुस्सा दिला देता है। वो ऐसी बात करती है कि गुस्सा आ जाता है, वो इस तरीके से बात करते हैं कि गुस्सा आ जाता है, बाहर के लोग ऐसे हैं उनको बात करने की तमीज नहीं है, गुस्सा आ जाता है, वो बेईमानी कर रहा है तो गुस्सा आ जाता है, उसका आचरण ऐसा है तो गुस्सा आ जाता है। इसका मतलब है कि मैं गुस्सा तो नहीं होना चाहता और मेरे अंदर गुस्सा जैसा कुछ है भी नहीं, लेकिन मैं क्या करूं, बाहर के लोग ऐसा करते हैं कि मुझे गुस्सा आ जाता है। मैंने केवल गुस्सा के बारे में बात कही है, ये हमारे सारे भावनाओं सारे विचारों के बारे में ऐसा ही होता है। परिस्थिति आ गई तो उस परिस्थिति में हम क्या करें। अब आप जैसे देखिए कि बहुत सी ऐसी खबरें आप सुनते होंगे कि उसको बहुत ज्यादा नुकसान हो गया, व्यापार कर रहा था बहुत ज्यादा नुकसान हो गया, तो वो इतने निराशा में हो गया कि उसने आत्महत्या जैसा दुखद कदम उठा लिया। इस तरह की खबरें हम सुनते रहते हैं, पढ़ते रहते हैं। किसी के आपस के संबंध बहुत खराब हो गए तो उसने इस तरह का दुखद कदम उठा लिया। किसी को किसी ने डांट दिया, वो डांट बर्दाश्त नहीं हुआ तो उसने ये कदम उठा लिया। तो अलग अलग तरीके की चीजें हो रही हैं इस धरती पर हो रही। हाँ, ये बात जरूर है कि 1960-70-80 तक का तो मैं बिल्कुल गवाह दे सकता हूं कि उस समय स्थितियां इतनी भयावह नहीं थी, होती थी इक्के दुक्के, कभी कभार इस तरह की स्थितियां होती थी। उस समय डिप्रेशन इतना नहीं था। हम देखेंगे कि ऐसा क्यों था और आज क्यों अधिक इतना हो गया है। तो दोस्तों, अक्सर ज्यादातर लोग अपने सारे विचारों के लिए बाहरी परिस्थितियों को जिम्मेदार ठहराते हैं। अगर ऐसा नहीं हुआ होता तो मैं कोई पागल हूं क्या कि मैं इस तरीके से सोचता, क्या मैं मुझे आपने मूर्ख समझ रखा है। अरे भैया, जब ऐसा होगा तो ऐसा तो होगा ही ना। दोस्तों, सच बात यह है कि बाहरी परिस्थितियां डेफिनेटली हमारे विचारों को उत्पन्न करती हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। हम उनसे पूरी तरह से विमुख नहीं हो सकते, लेकिन जैसा कि मैंने कल कहा था, उन परिस्थितियों का विश्लेषण हम कैसे करते हैं यह पूरी तरह से हमारे हाथ में है। कल की मेरी बात को आप याद करने की कोशिश कीजिए, मैंने वर्षा के उदाहरण के जरिए बताया था, उसे याद कीजिए। बाहरी परिस्थितियों से हम विमुख नहीं हो सकते, अप्रभावित नहीं रह सकते, वो हम पर प्रभाव डालेंगे ही डालेंगे, लेकिन उसे हैंडल कैसे करना ये हमारे हाथ में है। जैसे उदाहरण के तौर पर आप देखिए, शायद इससे मेरी बात और स्पष्ट हो सकेगी। जैसे मान लीजिए मैं क्रिकेट का खिलाड़ी नहीं हूं, लेकिन बल्ला लेकर के मैं अपने स्टंप पर खड़ा हूं कि ठीक है भाई आप बॉलिंग कीजिए। मैं बहुत ही सामान्य खिलाड़ी हूं, मोहल्ले का क्रिकेटर हूं आप समझ लीजिए। तो जैसे ही बॉल आएगी तो पता लगा कि मैं उसे हिट नहीं कर पाया और स्टंप उखड़ गया, मैं आउट हो गया। ये मेरी अपनी क्षमता है, उसने बॉलिंग की। अब मान लीजिए कि विराट कोहली खड़े हैं वहां और वही व्यक्ति बॉलिंग कर रहा है तो छक्के पर छक्का मारेगा। और यहां तक कि अगर दुनिया का बेस्ट बॉलर भी बॉलिंग कर रहा है तो वो विराट कोहली को इतने आसानी से आउट नहीं कर सकेगा। क्यों? तो बॉल तो वही है, बॉलिंग करने वाला भी वही है। तो क्या कारण है कि विराट कोहली उस पर छक्के पर छक्का मार रहे हैं और मैं छठवीं बॉल तक भी नहीं टिक सका, पहली ही बॉल में आउट हो गया और वो भी स्टंप उखड़ गया मेरा। तो बॉल बाहरी परिस्थिति है, जो बॉलर है वो बाहरी परिस्थिति है, लेकिन बैट मेरे हाथ में है कि मैं उस बॉल के साथ किस तरीके का व्यवहार करता हूं। दोस्तों, मुझे लगता है कि जिस दिन हमारी चेतना में यह विश्वास बैठ जाएगा, उस दिन मान करके चलिए कि हमारे जीवन में एक क्रांति की शुरुआत हो जाएगी। तो फ्रेंड्स, आज मुझे अब अपनी बात यहीं समाप्त करनी पड़ेगी क्योंकि वक्त हो चला है। अब मैं आप सबसे आज के लिए इजाजत चाहूंगा। नमस्कार।